नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों का कल्याण ही सच्चा सामाजिक न्याय है। श्री मोदी ने गरीबी को देश की सबसे बड़ी जाति बताया। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बिहार न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। केंद्रीय चयन पर्षद ने 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द किया। 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित। और कैमूर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति, कर्मनाशा, दुर्गावती, सुवारा और अन्य मौसमी नदियां उफान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों का कल्याण ही सच्चा सामाजिक न्याय है। आज तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जातीय गणना की रिपोर्ट पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की सबसे बड़ी जाति गरीबी है।
आज देश में सबसे बड़ी जरूरतमंद जिनको डगर डगर पर मदद की जरूरत है वो कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार है। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति गरीब है। और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाति उनकी सेवा, उनका कल्याण, उनकी प्रगति, यही सच्चा सामाजिक न्याय है।
जातीय गणना की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 9 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सैनी, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा विधायक दल के नेता जीतन राम मांझी, कांग्रेस के शकील अहमद खान, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान, भाकपा माले के महबूब आलम, सीपीआई के सूर्यकांत पासवान और सीपीआईएम के अजय कुमार ने बैठक में हिस्सा लिया। सभी दलों के नेताओं ने जाति आधारित गणना कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री की सराहना की। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रिपोर्ट पर सभी दलों की राय से राज्य के हित में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए आगे भी विचार विमर्श होगा। सर्वदलीय बैठक के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बैठक में यह जानकारी दी गई कि सदन के शीतकालीन सत्र में सर्वे के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।
ये जातीय जनगणना या जातीय गणना नहीं है, जातीय सर्वे है। और जातीय सर्वे सामाजिक आर्थिक सर्वे है। जब आप जातीय सामाजिक सर्वे कर चुके तो उसी में तो आर्थिक सर्वे भी था। 17 पॉइंट का डिटेल भी रिपोर्ट करनी चाहिए। अब इन लोगों ने कहा है कि उसको अभी तैयार की जा रही है, अगले सत्र शुरू होने के पहले तक सबको पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाए।
श्री सिन्हा ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट की खामियों को बैठक में उठाया और इस संबंध में आपत्ति लेने की व्यवस्था करने की मांग की।
उन्होंने कल प्रेस में दिया उसी चीज को आज दिखा रहे थे, और तो कुछ इसके अलावा था नहीं और कोई विशेष इस पर चर्चा भी नहीं हुई है। था जो कमी खामी था हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया। जो आपत्ति दर्ज करेगा उसके निष्पादन का मैकेनिज्म क्या है इनके पदाधिकारी नहीं बता पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इसको देख लीजिए।
बिहार में जारी जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर पूर्व में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने की बात कही थी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख 6 अक्टूबर को निर्धारित की है। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बिहार न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी।
बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है। दोनों में एक परिवर्तन है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% है वो आरक्षण पर लागू होगा, और दूसरा शब्दों में जो त्रुटियां हुई हैं, जो शब्द भाषा में अंग्रेजी और हिंदी रूपांतर में जो अंतर त्रुटियां हैं उसका संशोधन किया गया।
केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर अलग अलग जिलों में 61 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 100 से अधिक लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पटना में परीक्षा परिणाम जारी किया। उन्होंने बताया कि पेपर 1 और 2 में कुल 3,726 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उत्तीर्णता का प्रतिशत 79.79 है। वहीं पेपर 1 में 82.9 और पेपर 2 में 74.37% परीक्षार्थी सफल हुए हैं।
पेपर 1 के लिए 271,872 अभ्यर्थियों ने और पेपर 2 के लिए 156,515 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, और इस प्रकार कुल मिलाकर 428,387 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा हेतु आवेदन दिया था। इनमें कुल 376,877 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, और इनमें से कुल 3,726 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत 79.79% है। इस दोनों पेपर में कुल मिलाकर 45 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पेपर 1 में 16 विषय और पेपर 2 में 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी।
अभ्यर्थी bsebstat.com पर अपना परिणाम देख सकते हैं। एसटीईटी परीक्षा 4 सितंबर से 14 सितंबर तक ऑनलाइन आयोजित की गई थी। परीक्षा में लगभग 3,77,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। राज्य में अब कोचिंग संस्थानों का संचालन पूर्व की तरह सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा। पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा इस संबंध में जारी आदेश पर रोक लगा दी है। 31 जुलाई को जारी आदेश में सरकारी विद्यालयों और कॉलेज के संचालन समय तक निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा विभाग को कोचिंग संस्थानों का संचालन समय निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर सुने जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के उत्तरी भागों में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये झटके नेपाल में आए 2 भूकंप के बाद महसूस किए गए। इनकी तीव्रता 4.6 और 6.2 थी। पहला झटका 2:25 पर और दूसरा 2:51 पर महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूविज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में 5 किलोमीटर की गहराई में था। अभी किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। मॉनसून की सक्रियता के चलते प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास के चिनारी में सबसे अधिक 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, गया, कैमूर, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और अररिया समेत 19 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के अधिकांश स्थानों तथा शेष भाग के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, गोपालगंज, बक्सर, सीवान, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं शिवहर जिलों के एक या दो स्थानों में होने की संभावना है।
कैमूर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कर्मनाशा, दुर्गावती और सुबारी जैसी मौसमी नदियां पूरे उफान पर है।
सुवरा नदी का जल स्तर बढ़ने से कैमूर जिले के भगवानपुर में कई घरों, अस्पताल एवं कार्यालय जलमग्न हो गए हैं। भगवानपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं भभुआ शहर के डीएवी स्कूल परिसर में बाढ़ का पानी घुसने के बाद आपातकालीन स्थिति में स्कूली बच्चों को बचाया गया। कैमूर के जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिलाओं सहित कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 151 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना और मुंगेर से 30-30 नए मामले मिले हैं। वहीं भागलपुर में 28, सारण में 15 और वैशाली में 8 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 7,000 से अधिक हो गई है। अग्निपथ योजना के तहत बिहार रेजिमेंट केन्द्र दानापुर के दूसरे बैच के 344 युवा और गतिशील अग्निवीर आज औपचारिक रूप से भारतीय सेना के अंग बन गए। दानापुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 31 सप्ताह के सैन्य प्रशिक्षण के बाद आज पासिंग आउट परेड में इन अग्निवीरों ने मार्च पास्ट किया और देश की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली। पासिंग आउट परेड में बिहार रेजिमेंट सेंटर के समादेष्टा ब्रिगेडियर केटी जसपाल ने परेड की सलामी ली। उन्होंने अग्निवीरों से तिरंगे के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को हमेशा याद रखने और मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ने का आह्वान किया। इन अग्निवीरों की ऑपरेशनल परिस्थितियों में तैनाती की जाएगी। बेगूसराय जिले के टंडारी थाना क्षेत्र के राजोपुर कटरमाला गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा गिराने के मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अनंत कुमार सत्यार्थी का आज गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। अनंत कुमार सत्यार्थी हवेली, खड़गपुर और मुंगेर विधानसभा सीट का एक एक बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने गहरा शोक जताया है। खगड़िया की विशेष उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के मामले में 5 लोगों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों का कल्याण ही सच्चा सामाजिक न्याय है। श्री मोदी ने गरीबी को देश की सबसे बड़ी जाति बताया। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बिहार न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। केंद्रीय चयन पर्षद ने 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द किया। 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित। और कैमूर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति, कर्मनाशा, दुर्गावती, सुबारा और अन्य मौसमी नदियां उफान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।